स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदादिकम् हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि पांचकल्पतरूढ़ पिपा सिंधुभ्य पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महापदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामे गौरविणे नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते अच्छा लगता है वैसे
object. Not there, though. भगवान के पास पुनः पुनः बातें हो आप आओगे जाओगे आओगे जाओगे एक दिन आके फिर आना ही है फिर जाना नहीं ये अभ्यास अच्छा है और फिर केवल केवल आप आके जाते ही नहीं हो आके फिर आप बैठते भी हो ठाकुर के दरबार में थम्बा थोड़ा बांधा बड़ो उगीज गड़बड़ का मराठी जो जानते हैं इतनी भाग दौड़ मरने के लिए समय नहीं है इत्यादि जो चल रहा है इसके बीच में भी आप आते हो भगवान नोट करते हैं इट टेक्स नोट ऑफ दिस तो फिर आप सुनते भी हो भगवान लोग या भक्त का या दर्शनार्थी भगवान को देखना तो चाहते हैं दर्शन तो करना चाहते हैं लेकिन भगवान को सुनना नहीं चाहते ऐसा देखा जाता है अधिकतर लोग भगवान को दर्शन के लिए तैयार देखना चाहते हैं लेकिन भगवान को सुनना नहीं चाहते तो मंदिर में कौन बोलते हैं भगवान ही तो बोलते हैं और कोई आसन नहीं आसनस्थ वक्ता कुछ बोलता है तो अपने पदर से नहीं बोला तो अपनी बात को नहीं समझ कहता हो क्या प्रभुपाद ही कहा करते थे भगवान को बोलने दो लेट कृष्णा स्पीक फॉर हिमसेल्फ यू शट अप मुख बंद करो वक्ता वैसे खुद का मुख तो बंद करता है एक दृष्टि से और फिर अगर खोलता है और बोलता है तो भगवान की ओर से बोलता है या भगवान को बोलने देता है तो ऐसे आप आते हो और सुनते भी हो भगवान को सुनते हो जैसे अर्जुन ने बातें सुनी तो सुनना जरूरी है और सुन के फिर ऐसे कार्रवाई करना वैसे फिर वो श्रवण पूर्ण हुआ सुनना फिर चिंतन करना मनन करना सुनी हुई बातों को और फिर अमल करना फिर वो सुनना पूरा हुआ जब हम सुनते हैं तो सुनने की शुरुआत तो हो गई लेकिन वो श्रवण पूरा तब होता है जब हम वैसे कार्रवाई करते हैं वैसा आचरण करते हैं उठाओ देखो सुन नहीं रहा मैं सुना कि नहीं, माइक्रोफोन पर बोला जा रहा है, उठाओ। तो अभी सुन नहीं रहे, क्यों कहते हम सुन नहीं रहे? सुन तो लिया लेकिन उठने के लिए कहा था लेकिन उठे नहीं, इसलिए हमने कहा कि सुन नहीं रहे। फॉर इंस्टेंस से सुनना, भगवान को और फिर वैसे भगवान को सुनेंगे तो फिर भगवान को देखने की दृष्टि या फिर वो दिव्य चक्षु हमको प्राप्त होंगे। इन चर्म चक्षुओं से देखा नहीं जा सकता भगवान को, आत्मा की आंख खुलेगी दिव्य चक्षु, जिसको कहते हैं ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन ज्ञानांजन शलाकाया। ज्ञान का अंजन डालते हैं गुरुजन, हमारी आंखें खोलते हैं या आंखों का ऑपरेशन होता है, इस आई ऑपरेशन कैंप एवं मंदिर में आते हैं श्रवण के लिए, भगवान को सुनने के लिए। तो गुरुजन भगवान की ओर से श्रोताओं के आंखों में ज्ञान का अंजन डालते हैं, आंखें खोलते हैं। उन्मीलितम चक्षुर क्या कहते हैं, उन्मीलितम, उन्मीलितम मीन्स ओपनिंग, उन्मीलितम ज्ञानांजन। फिर धीरे धीरे प्रेमांजन छूरित भक्ति विलोचन ही ना, तो नहीं आंखों में फिर प्रेम प्रेमांजन वाक्य सुशोभित होगी, आंखों की शोभा काजल से नहीं, दैट ऑइंटमेंट दैट इज नॉट, वो अलंकार या डेकोरेशन नहीं, प्रेमांजन छोड़ी तो भक्ति विलोचन नहीं। फिर भगवान कहेंगे ऐसा भक्त मुझे प्रिय है, भक्तिमान में प्रियो न रहा। हम भगवान को ही सुन रहे हैं, जो वचन विचार उपदेश अमृत भगवान ने सुनाया अर्जुन को, वही शब्द उपलब्ध है। They have been kept intact. Evam parampara praptam parampara me. Un us dhvani ko, that sound vibration, uski raksha ki hai guru jana ne, parampara ke acharyo ne, aur vahi vachan hum tak पहुंचाने की व्यवस्था, ये भी भगवान की व्यवस्था है। भगवान की कृपा है और हमको भी सदबुद्धि दे रहे हैं भगवान। उनको बुलाए हैं, भगवान ने बुलाया तो फिर आप चले आए। और भी कहीं जा सकते थे आपके पास, तो थाउजेंड्स हजारों स्थान, लेकिन आप इस समय और कहीं पर भी नहीं हो। आप कहाँ हो? यू आर ओनली हियर। आप और कहीं हो? ऑफकोर्स माइंड, आपका शरीर तो यहाँ है, लेकिन पर मन यहाँ नहीं है। तो फिर आप पूरे यहाँ नहीं हो, या हो भी और नहीं भी हो। आप मन से भी यहाँ हो, मन पूर्वक श्रद्धा पूर्वक हो, यहाँ सुन रहे हो, सुन रहे हो, तो क्या वही हो जहाँ वे शब्द है, कही हुई जो बातें हैं, बस उन्हीं को सुन रहे हो आप। It is like there's no one in the middle, in between you and the Lord, ऐसी स्थिति। इसको एकांत का एकांत एकांत बस ऐसी स्थिति जहाँ हम और हमारे भगवान ही बचेंगे, और दुनियादारी को दूर अपने स्थान पर, जहाँ भी दुनिया है, माया है, लेकिन हम भगवान के साथ। फिर हम सुन रहे हैं, ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं। तो श्रोता तो आत्मा ही श्रोता है। श्रोता कौन है? आत्मा श्रोता है। तो आत्मा अगर सुन रहा है, और वक्ता है भगवान, वक्ता है भगवान और श्रोता है आत्मा, अश्रद्धा पूर्वक हम सुन रहे हैं, तो वो है हमारा भक्ति भाव, या भक्ति पूर्वक श्रद्धा पूर्वक हम सुन रहे हैं। श्रद्धा वाल्लभती ज्ञानम, भगवान श्रद्धा वाल्लभती ज्ञानम, जो श्रद्धावान है वो ज्ञान को प्राप्त करेगा। श्रद्धा वाल्लभती ज्ञान, तो श्रद्धा भक्ति, श्रद्धा से भक्ति प्रारंभ होती है, श्रद्धा से प्रेम तक, प्रेम भक्ति। तो ऐसे श्रद्धा पूर्वक, निष्ठा पूर्वक, आगे की स्थिति है, निष्ठा पूर्वक निष्ठावान बन के हम सुन रहे हैं, या वैसे श्रद्धा से सुनते जाएंगे तो फिर नित्यं भागवत सेवया नष्टः नष्टः प्रायेषु भद्रेषु, नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। हमने शुरुआत की श्रद्धा, श्रद्धा से, और फिर सुनते रहे सुनते रहे, नित्यम भागवत सेवया, भागवत की सेवा या भगवत गीता की सेवा करते रहे, श्रवण करते रहे, अध्ययन करते रहे, फिर चिंतन मनन करते रहे, तो फिर क्या होगा? भगवती भक्तिर भवती, भगवती मतलब भगवान में, भगवान में क्या होगा? भक्ति उत्पन्न होगी, और उस भक्ति का नाम दिया है निष्ठा, भक्तिर भवती नैष्ठिकी, नैष्ठिकी नाम की भक्ति, या नैष्ठिकी श्रेणी की भक्ति, श्रेणी स्थिति स्तर की भक्ति। तो श्रद्धा से शुरुआत की तो हम लोग निष्ठावान बने, तो फिर रुचिवान बने, तो आसक्तवान आसक्त बने, और भाव भाव पूर्ण बने, प्रेम पूर्ण बने। तो जो भक्त है आत्मा और भगवान भगवान है, या भगवान की कथा भी भगवान है, भगवान की कथा है भी या ही भगवान है, जब भगवान की लीला का श्रवण करते हैं तो भगवान भगवान ही है। वह रूप भी है भगवान का, वह गुण भी है भगवान के, वह धाम भी है भगवान का। तो हम तो श्रोता जीवात्मा भक्त है और भगवान भगवान है, अपने नाम के रूप में या उनकी लीला के रूप में, अपने विग्रह के रूप में राधा गोपीनाथ के, और फिर हमारी भक्ति श्रोता की भक्ति, इस प्रकार ये त्रिकोण कहिए सर ट्रायंगल पूरा होता है। भक्त भक्त करता है भक्ति तो प्राप्त करता है भगवान को, या भक्त भगवान, या भक्त का भगवान से संबंध स्थापित होता है, भगवान से संबंध भक्ति से, भक्ति पूर्वक किए हुए कृत्यों से, कार्यों से, कार्यकलापों से, सारे प्रयासों से। और जब भक्ति भक्त हुआ तो फिर गुणवान होगा, गुणवान। सर्वै गुणै तत्र समासते सुरा, कल ये चर्चा हुई। फिर सारे गुण हम में आ जाएंगे जब हम भगवान की भक्ति करेंगे। ऐसी भक्ति भगवती अकिंचना, भगवान की अकिंचना, कुछ नहीं चाहिए बदले में, कुछ नहीं चाहिए, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये, न धनम न जनम अहेतुकी भक्ति, अहेतुकी। मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवत भवदा भक्तिर अहेतुकी त्वयि, ऐसी अहैतुकी भक्ति। क्यों भगवान की भक्ति करे? Why should we serve? तो पूछा जा सकता है क्यों ना करे, कोई कहता क्यों करे, क्यों ना करे। भगवान की भक्ति जीव के लिए तो स्वाभाविक है, ऐसी भक्ति जब करेंगे, या भक्ताष्टक चल रहा है, भक्तों के गुणों का व्याख्यान विश्लेषण, यह भगवान स्वयं ही कह रहे हैं ऐसा गुणवान, ऐसे गुण वाला भक्त मुझे प्रिय है। तो ऐसे गुण प्राप्त होंगे, भक्ति करके ही तो गुण प्राप्त होने वाले हैं। माम जो योग अव्यभिचारेण, वही बात है, अव्यभिचारेण निष्किंचना वहा निष्किंचन भक्ति, अव्यभिचारेण विचलित होते हुए या बिना विचलित हुए, ये भी अर्थ है। ये अव्यभिचारेण केवल भगवान के भक्ति, मामेकं शरणं व्रज, ये व्यभिचारेण भक्ति, व्यभिचारी व्यक्ति तो इसके पास जाता है, इसके पास जाता है, उसके पास जाता है, व्यभिचारी व्यभिचारी दुराचारी व्यभिचारी, तो अव्यभिचारेण बस चेस्टिटी, बस भगवान मेरे स्वामी है, तो ऐसे माम चलो, यह माम चल्य का योग माम चल्य अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, जो भक्ति करता है तो क्या होगा भी समर्थित समर्थितान गुणा, तो ये तीन गुण है तम गुण रजगुण सत्वगुण समतित्य, एतान गुणान समतित्य, इन गुणों को लांघ कर यानी के परे पहुंच कर गुणातीत होकर, या भक्त भक्ति करेगा तो गुणों के परे पहुंचेगा, या अंग्रेजी में कहते ट्रांसेंडेंटल, ट्रांसेंडेंटल ट्रांसेंड परे पहुंचना, तो भक्ति करने से भगवान की शुद्ध भक्ति करने से फिर गुणों से मुक्त होगा, एक तो कुछ गुणों से मुक्त होगा और फिर दूसरे कुछ गुणों से वो गुण संपन्न होगा। हम जो अवगुणी है, दुर्गुणी है, व्यभिचारी है, दुराचारी है, ये सब है, ये किसके कारण? तीन गुणों के कारण, तीन गुणों के प्रभाव के कारण। तो तीन गुणों के प्रभाव से मुक्त होंगे हम, तम गुण तम गुणों से, तम गुण के संग से जो हमें अवगुण अवगुण आ जाते हैं उन अवगुणों से हम मुक्त होंगे, रजगुण से, रजगुण के संग से जो हमें दुर्गुण आ जाते हैं, अवगुण आ जाते हैं, उनसे हम मुक्त होंगे, और सत्वगुण से भी कुछ कुछ तो होते हैं, वो बंधन है, सत्वगुण का भी बंधन है, उसके भी कुछ गुण है, वही भौतिक है, सत्वगुण भी भौतिक है, भौतिक है, रजगुण भौतिक है, तमोगुण भौतिक है, विशुद्ध सत्व कहते हैं, विशुद्ध सत्व दिव्य स्तर, तो इन भौतिक गुणों से हम मुक्त होंगे और दिव्य गुणों से युक्त होंगे, क्या करने से? भक्ति करने से। तो ये श्रवण भक्ति है, आप भक्ति कर रहे हो, हम भक्ति कर रहे हैं, श्रवण कीर्तन ये भक्ति है, यह भक्ति करने से हरे कृष्णा
Hare Krishna, 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 Hare Hare.
Hare Ram, Hare
Ram, Ram Ram, Hare. ये भी भक्ति है, ये भक्ति है, भक्ति है. तो फिर भगवान के गुण, भगवान के नाम के संपर्क से, तो भगवान के गुण हमें है आत्मा में, वो उदित होंगे. श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करा होगा. एनीवे ये तो सेटिंग द सीन ही हो रहा है. मैं जो कुछ कह रहा हूँ कुछ मंच बना रहे हैं, लेकिन भूमिका में इतना समय व्यतीत नहीं करना चाहिए था, लेकिन चिड़िया चुन गई थे. अनपेक्षा सुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्ता समे प्रियः. किसने कहा? श्री भगवान उवाच. भगवान है कि नहीं? यहां से तो शुरुआत नहीं करनी चाहिए. भगवान है कि नहीं? क्योंकि उवाच कहना भगवान ने कहा, केवल भगवान है कि नहीं से भी आगे बढ़कर भगवान है. फिर भगवान निराकार है कि साकार है, ऐसे इस अध्याय की शुरुआत वहीं से हुई है. अर्जुन ने प्रश्न पूछा, साकार निराकार आप ही प्रभु कहिए. तो उसी के उत्तर में भगवान ये सब भक्त की बात, भक्ति की बात, भक्ति योग की बात. इस अध्याय का नाम ही है भक्ति योग. तो भक्त भक्ति योगी बनेगा. यस, भक्त तो भक्ति योगी होता ही है. तो ये सारे गुणों की खान बनेगा, सारे गुण उसमें आ जाएंगे. मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय है. तात्पर्य भक्त को धन दिया जा सकता है, किंतु उसे धन अर्जित करने के लिए संघर्ष नहीं करना चाहिए. तो हरी हरी गोपीनाथ की. यहाँ तो व्याख्या करते जाएंगे तो फिर व्याख्या तो प्रभुपाद कर ही रहे हैं. फिर व्याख्या पर व्याख्या होती है. वैसे श्लोक ही कहा तो बस, फिर आगे का श्लोक कहो, फिर आगे का श्लोक कहो. अर्जुन को तो भगवान के उस श्लोक ही सुना रहे थे, लेकिन हम श्लोक भी सुनते हैं तो कुछ पल्ले नहीं पड़ता. What is that? What does that mean? हमको पढ़ने भी नहीं आता. संस्कृत थोड़ा कठिन जाता है, मराठी पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा ही. लेकिन सुचिर दक्ष गथा व्यथा तो हुआ, पढ़ भी लिया तो फिर हमको ये भावार्थ या तात्पर्य अनिवार्य होता हमारे लिए। एक प्रकार के हम वी आर इलिटरेट, संस्कृत की दृष्टि से वी आर निरक्षर, वी आर इलिटरेट। तो कभी निरक्षर मराठी मध्ये काय म्हणतात, अनपढ। तो ऐसे व्यक्ति कोई कोई पत्र भेजता है तो कभी कभी वो क्या करता है, पत्र ले जाता है पड़ोस के पास, तो हमसे पढ़ के सुना। तो पढ़ के सुनाने के बाद ये पूरा समझता नहीं है, इसलिए एक वाक्य को पूरा समझाओ, उसको समझाना पड़ता है वाक्य। तो जो लिखा था वो पढ़ तो लिया तो भी समझ में नहीं आता। कभी ऐसी कुछ परिष्कृत भाषा, भाषा परिष्कृत, संस्कृत भाषा वैसे परिष्कृत भाषा है और संक्षिप्त भाषा भी है, सूत्र रूप में भी कहा कही जाती है बातें, तो बहुत बड़ा सागर एक गागर में भर देते हैं भगवान वेदांत सूत्र इत्यादि जो उपनिषद, और गीता भी एक उपनिषद, उपनिषद जैसी भाषा है उपनिषद, गीतोपनिषद भी कहते हैं गीता। तो अनपढ़ व्यक्ति जिससे फिर जिससे पढ़वाता है, पढ़ो पढ़ो मेरे लिए, और फिर समझाता सुनाता है। तो ऐसे हमें भी श्लोक पढ़ा या सुना तो समझ में नहीं आता, फिर तात्पर्य पढ़ते तो भी कभी कभी समझ में नहीं आता, फिर तात्पर्य को पुनः और उसका खुलासा मतलब खोल के उसका विस्तार करके समझाना अनिवार्य होता है कभी कभी। क्या भगवत कृपा से यदि उसे स्वयं धन की प्राप्ति हो तो वह उद्विग्न नहीं होता। आप समझे हो ऐसा मान के हम आगे बढ़ते हैं कि उद्विग्न किसको होता है, उद्विग्न क्या होता है, कल बता दे क्षुब्ध और स्तब्ध, स्वाभाविक है कि भक्त दिन भर में दो बार स्नान करता है और भक्ति के लिए प्रातःकाल जल्दी उठता है। इस प्रकार वह बाहर तथा भीतर से स्वच्छ रहता है। तो श्लोक में जो अलग अलग गुणों का उल्लेख भगवान किए हैं श्रील प्रभुपाद उसको तात्पर्य में कह रहे हैं, लेकिन वो प्रभुपाद रुकते नहीं कि या मैंने अनपेक्षा की व्याख्या की अभी नेक्स्ट, ऐसा नहीं कहते प्रभुपाद। तो कनेक्शन हमसे अनपेक्ष की बात की और फिर भी सूची 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 एक गुण है, सूची क्लेनलीनेस व्हिच इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस कहते हैं। तो उसकी बात कर रहे हैं। तो सूची तो भक्त क्या करता है, दिन में दो बार स्नान करता है प्रभुपाद लिख रहे हैं, और प्रातःकाल में जल्दी उठता है। सूची का इतना नहीं समझा है, मतलब सदैव दक्ष होता है। फिर अरे दक्ष क्या व्याख्या प्रभुपाद कर रहे हैं, तो सोची मुची हो सुची हो मुची हो यदि कृष्ण त्यजे ऐसा ही वचन है। कोई व्यक्ति सुची हो सकता है लेकिन उसने अगर भगवान के भजन को त्यागा तो बन जाएगा मुची मतलब चमार। लेकिन कोई मुची भी हो मुची शायद जन्म से मुची था या मुची है मुची मतलब उसके कार्य से। लेकिन यदि कृष्ण भजे तो कौन बन जाएगा सुची हो वो शुद्ध होगा वो ब्राह्मण होगा भक्त होगा। तो ये सुची का तो सुची किसको कि तो जो शुद्धिकरण जो है यदि कृष्णा भजे या यदि कृष्णा त्यजे से काफी अंतर आता है। कृष्ण को भज लिया तो मुची भी होगा तो बन जाएगा सुची लेकिन भगवान की भक्ति जो नहीं करता है वो सुची भी हो सकता है चतुर्वेदी हो सकता है नाम से चतुर्वेदी हो सकता है लेकिन अगर भक्ति नहीं कर रहा तो चमार है गवार है चमार है। तो ऐसा सूची और सूची तो केवल बाहरी शारीरिक स्वच्छता से सीमित नहीं रखना चाहिए। मन चंगा तो कठौती में गंगा है मन चंगा कुछ लोग कहते हैं उतना ठीक नहीं है। तो अंतकरण की शुद्धि मन की शुद्धि अदरवाइज सुपरफिशियल एक्सटर्नल बाहरी वस्त्र तो स्वच्छ है शरीर स्वच्छ है लेकिन मन में सारा कचरा लोग तथा कथित स्वच्छ लोग स्वच्छ वस्त्र भी धारण किए हुए स्वच्छ शरीर को स्वच्छ किया लेकिन फिर चाय पिया तो सारा गंदा चरणामृत पिया तो शुद्ध या फिर अखबार पढ़ा तो अरे संसार का कचरा उसने डाउनलोड किया किसी ने कलेक्ट किया गैदर किया इंफॉर्मेशन गैदरिंग और अखबार में छाप लिया फिर आपने उसको डाउनलोड किया सारा संसार का गंदगी मैल मैले विचार आतंकवाद और दिस और दैट और सेक्स एंड वॉयलेंस एंड तो सूची को इन अ होलसम वे हमारे देश में भी स्वच्छता अभियान को छेड़े हुए हैं स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत भी कह रहे हैं। तो बाहरी स्वच्छता रास्ता साफ ये साफ वो साफ प्रांगण साफ लेकिन मन मन गंदा विचार गंदे डर्टी थॉट्स डर्टी डीलिंग्स तो बेकार है बेकार वो स्वच्छता बाहरी स्वच्छता। तो भक्ति से हरि नाम से वैसे हरि नाम करने से क्या होता है चेतो दर्पण मार्जनम सूची हुआ स्वच्छता। तो इसका अभियान वैसे प्रभुपाद की फिर बात प्रभुपाद छेड़े है वो अभियान वो कैंपेन इंटरनल क्लेंजिंग का जो अधिक महत्वपूर्ण है। ओके तो दक्ष भक्त सदैव दक्ष होता है। दक्ष मतलब अलर्ट भी और क्या एक्सपर्ट एक्सपर्ट भी कुशल। तो जीवन के समस्त कार्यकलापों के सार को वो जानता है। एक्सपर्ट हमको भी एक्सपर्ट होना चाहिए। यह हमारी एक्सपर्टीज का भगवान की सेवा उपयोग कर सकते हैं। बिकम एक्सपर्ट मैनेजर व्हाई नॉट एक्सपर्ट इज एक्सपर्ट मृदंग प्लेयर एक्सपर्ट 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 कई थाउजेंड हजारों प्रकार की एक्सपर्टीज हो सकती है होती है। तो फिर उसी एक्सपर्टीज और दक्षता का मूल्य तभी है जब उसका उपयोग भगवान की सेवा में है तो फाइन अदरवाइज माया के वैभव को बढ़ाने फैलाने अगर उस दक्षता का एक्सपर्टीज का कला कौशल्य का उपयोग किया तो ऐसे हमने दुरुपयोग किया अब्यूज्ड मिसयूज्ड हमारे एक्सपर्टीज का। और तो भक्त को या अपने एक्सपर्टीज को भगवान की सेवा में उपयोग करके वो भक्त बनता है। भक्त कभी किसी दल में भाग नहीं लेता अतएव वह चिंता मुक्त रहता है। दल में मतलब कोई पार्टी कोई पक्ष पक्षपात ग्रुपिज्म ये ग्रुप ये इसका ग्रुप है उनका भक्ति वृक्ष है इनका भक्ति वृक्ष है ये मेरा मेरा कांग्रेगेशन है इसका कांग्रेगेशन ये वही ये दल 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 कह दें दल दल या दल बदल। एंड उसके साथ फिर जुड़ा हुआ पॉलिटिक्स दिस विल स्पॉइल एवरीथिंग। बढ़िया है कि कृष्ण के पक्ष में रहो तो फिर विजयस्तु पांडुपुत्राणाम ईशाम पक्षे जनार्दन। पांडुपुत्रों की जीत जरूर होगी क्यों ईशाम पक्षे जनार्दन उनके पक्ष में जनार्दन कृष्ण है। जनार्दन कृष्ण के पक्ष में है पांडुपुत्र इसलिए उनकी जीत निश्चित होगी। वो हम सभी वैसे एक ही दल के हैं एक ही पक्ष के हैं वो पक्ष है कृष्ण पक्ष है कृष्ण भावना हमारा पक्ष है। नहीं तो फिर अद्वेष्टा सर्वभूतानां पहले आया है अद्वेष्टा सर्वभूतानां द्वेष ईर्ष्या द्वेष उत्पन्न होगा ये दल वो दल ये ग्रुपिज्म। तो भक्त दूर रहता है ऐसे दल दल से या दल बदल से। इसीलिए अतएव वह चिंता मुक्त रहता है, जिसके कारण वह चिंता से मुक्त रहता है। समस्त उपाधियों से मुक्त होने के कारण कभी व्यक्ति कभी व्यथित नहीं होता। उपाधियों से मुक्त वह जानता है कि उसका शरीर एक उपाधि है। उपाधि समझते ना, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम। उपाधि तो मल है, उपाधि मल, उपाधि डेजिग्नेशन, ये उपाधि उपाधि कई प्रकार की उपाधियां। तो इन अतएव शारीरिक कष्टों के आने पर वो मुक्त रहता है। शुद्ध भक्त कभी भी ऐसी किसी वस्तु के लिए प्रयास नहीं करता जो भक्ति के नियमों के प्रतिकूल हो। उदाहरण, किसी विशाल भवन को बनवाने में काफी शक्ति लगती है, अतएव वह कभी ऐसे कार्य में हाथ नहीं लगाता जिसे उसकी चल रहा है ना, सपोज वर्किंग, आई डोंट सी एनी थिंग, जिसे उसकी भक्ति में प्रगति नहीं होती हो। वह भगवान के मंदिर, वह भगवान के लिए मंदिर का निर्माण करा सकता है और उसके लिए वह सभी प्रकार की चिंताएं उठा सकता है, लेकिन वह अपने परिवार वालों के लिए बड़ा सा मकान नहीं बनाता। आपने सुना भगवान के लिए मकान बनाना है तो भगवान के लिए मैं मंदिर बनाऊंगा। या फिर अपने लिए बना भी लिया तो फिर उसी उस मकान का ही मंदिर बना सकता है। दैट इज वन वे आउट। क्योंकि अपने लिए कुछ किया, कुछ बनाया जो भी, तो उसे क्या होता है, हम लोग बंधन में आ जाते हैं, बंधन में आ जाते हैं। इसलिए भगवान का ऐसे आदेश उपदेश है, हमें तभी कार्य करना चाहिए जब हम योग में स्थित है। योग में स्थित हो जा, पहले योग में स्थित हो जा। योगस्थ गुरु कर्माणी भगवान कहता है। कुरु मतलब करो, कर्माणी कार्य करो, कार्य का बहुवचन कर्माणी, कई सारी गतिविधियां करते रहो, लेकिन कब, योगस्थ योग में स्थित होके। तो समाधिस्थस्य केशव, तो कोई समझ कह सकता है योगस्थ तो योगी हो गया तो फिर वो कार्य नहीं करेगा, फिर कैसे मंदिर बनाएगा या कोई कंस्ट्रक्शन करेगा या कोई कार्य कैसे करेगा। तो ये गलत धारणा है, तो योगी कुछ कार्य नहीं करते, योगी निष्क्रिय नहीं होते। तो भगवान तो ये उसे दूसरे अध्याय में इसकी चर्चा, ये प्रश्नोत्तर हुआ है, अर्जुन ने प्रश्न पूछे हैं, भगवान ने उत्तर दिए हैं। तो समाधिस्थ केशव, समाधिस्थ व्यक्ति क्या करता है, कौन सी भाषा बोलता है, किम आसित कैसे बैठता है, किम ब्रजेत किम कैसे वो विचरण करता है। आप डिस्ट्रैक्ट है, ये लोग यू डू व्हाट यू वांट टू डू, लेकिन इसके कारण औरों की समाधि उस समाधि में स्थित होके उनको श्रवण भी ऐसे करना चाहिए, अभी कार्य भी समाधिस्थ होके, समाधिस्थ होके समाधि ने कि वो जब चल बसा फिर समाधि ना, सारा जीवन वैसे समाधिस्थ सारे कार्यकलाप, जैसे गोपिया है सारी भागदौड़ चल रही है लेकिन वो समाधि में सब हो रहा है। समाधिस्थ योगस्थ कुरु कर्माणि, तो कार्य करने की कला है योग कर्मसु कौशलम का। योग योग क्या है? एक जीने की कला है, जीने की राह है, आजकल थोड़ा कुछ आर्ट ऑफ लिविंग, तो आर्ट ऑफ लिविंग है, जीने की आर्ट है क्या? योग, योगी जीवन जीता है तो सारे कार्यकलाप उसके होते रहते हैं, तो योगी बन के ही वो सारे कार्यकलाप करता है। तो फिर ऐसे किए हुए कार्य बंधन में नहीं डालेंगे, घड़ी तो दौड़ रही है। यो माम हृष्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान समय प्रियः रघुनाथ की जय। जो न कभी हर्षित होता है न शोक करता है, जो न तो पछताता है न इच्छा करता है, तथा जो शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। ये सारा मेडिटेशन की बात है, वैसे ये सारा श्रवण भी क्या है? एक ध्यान है, एक मेडिटेशन है। ध्यायतो विषयान् पुंसां, तो श्रवण कर रहे तो उनसे मेडिटेशन ध्यान। और उसके साथ संकल्प भी, मुझे भी ऐसे ही करना है, न शोक करता है तो फिर उन्होंने नोट किया, शोक नहीं, मेरा भक्त शोक नहीं करता, शोक नहीं करने वाला भक्त मुझे प्रिय है, तो फिर मन में उसको बिठाना है। और फिर उसका अभ्यास करना है, कल जब कुछ शोक की बात तो फिर कृष्ण कहने शोक नहीं करना, तो फिर कुछ मेंटल कुछ एडजस्टमेंट कुछ सुधार, द वे पीपल थिंक आई वांट टू सी दैट टू बी चेंज्ड। तो अर्जुन भी सोच रहा था, शोक कर रहा था, तो भगवान ने नहीं 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 भगवान शोभा नहीं देता, नान सोचंती पंडित। और भगवान, अरे तुम पंडित जैसी बात तो कर रहे हो लेकिन शोक भी कर रहे हो। भगवान ने परिभाषा कही, पंडित की परिभाषा क्या है? न अनुसोचंती पंडित, पंडित वह व्यक्ति है जो शोक नहीं करता, बस ऐसी परिभाषा डेफिनेशन हो, जो कभी शोक ना करे ऐसा पंडित। पंडित मतलब ज्ञानवान से, लर्नेड को पंडित कहते हैं। मात्रवत परदारेषु लोष्ट्रवत परद्रव्येषु आत्मवत सर्वभूतेषु य पश्यति स पंडितः। अचानक क्या नीति का ये वचन, पंडित वह व्यक्ति है, इज अ रियली लर्नेड। कौन नहीं, उसकी व्याख्या एक बार कहा तो फिर आपको समझ में आना चाहिए था। मातृवत परदारेश, परदार औरों की पत्नी या स्त्रिया, मैरी छोड़ के पत्नी, मैं गृहस्थ हूं तो परदारेश मातृवत, लोष्टवत परद्रव्येश औरों का द्रव्य औरों की संपत्ति, लोष्टवत मतलब जैसे लगा कूड़ा करकट के समान, और ना टच इट, मेरा नहीं है इसीलिए मैं, और आत्मवत सर्वभूतेश, आत्मवत सर्वभूतेश सभी जीव कैसे है, आत्मवत मानव मेरे जैसे है या मेरे ही है, जैसे मैं स्वयं को ट्रीट करता हूं वैसे मुझे औरों को भी वैसे करना चाहिए। आत्मवत सर्वभूतेश यह पश्यति स पंडित, ये भी पंडित की परिभाषा कहिए कहिए, या पंडित की पहचान। तो यह शोक की बात रही है तो शोक नहीं करता, तात्पर्य शुद्ध भक्त भौतिक लाभ से न तो हर्षित होता है, ये पढ़ लिया कि नहीं, और न हानि से दुखी होता है, वह पुत्र या शिष्य की प्राप्ति के लिए न तो उत्सुक रहता है न ही उनके न मिलने पर दुखी होता है। इसी को द्वंद्वातीत करे, द्वंद्वातीत द्वंद्व से अतीत, द्वंद्व से अतीत शब्द तो एक हुआ द्वंद्व, लेकिन संसार वैसे द्वंद्व से ही भरा है। और यह भगवान कह रहे हैं इसे उसे सुख से दुख से, सुख और दुख ये द्वंद्व है, लाभ और हानि ये द्वंद्व है, शत्रु और मित्र ये द्वंद्व है, रात और दिन ये द्वंद्व है, गरीब श्रीमान ये द्वंद्व है, देशी परदेशी ये द्वंद्व है, हिंदू मुसलमान ये भी हम लोगों ने द्वंद्व पैदा किया है। लाइक दिस अनएंडिंग। तो भगवान में, भगवान ने गीता में अन्य स्थान पर कहा द्वंद्वातीतो, द्वंद्वातीतो विमत्सरः, मेरा भक्त कैसा होता है, द्वंद्वातीत होता है, द्वंद्व से अतीत, जैसे गुणातीत की बात हो रही थी, गुणों से परे, तीन गुणों से परे गुणातीत, द्वंद्व से परे द्वंद्वातीत, द्वंद्व से अतीत। तो यहां तो कुछ ही आइटम्स का नाम लिया है, सुख दुखे सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, भगवान अन्य स्थान पर कहे। और इस गुणावली में, इस भक्ताष्टक में भी कुछ द्वंद्वों का उल्लेख हो रहा है। तो भक्त क्या करता है, द्वंद्वों से अतीत शुभ अशुभ परित्यागी, तो वह अपनी किसी प्रिय वस्तु के खो जाने पर उसके लिए पछताता नहीं, इसी प्रकार यदि उसे अभिप्सित मतलब इच्छित वस्तु की प्राप्ति नहीं होती तो वो दुखी नहीं होता। तो दिस इज काफी बड़ा होमवर्क है, कृष्ण भावना भावित होना, मतलब ये सारे हम जो द्वंद्वों में फंसे हुए हैं और पीसे जा रहे हैं, तो इससे मुक्त होना, द्वंद्वातीत होना। इन प्रैक्टिस थियरी तो सुन ली हमने, देन वी नीड, इसको ज्ञान कहते हैं। फिर ज्ञान का विज्ञान, ज्ञान विज्ञान मस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ब्राह्मण ज्ञानी भी होता है, विज्ञानी भी होता है, उस पर अमल करता है। वह परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए बड़ी से बड़ी विपत्ति सहने को तैयार रहता है। भक्ति के पालन में उसके लिए कुछ भी बाधक नहीं बनता। ऐसा भक्त कृष्ण को अतिशय प्रिय होता है। अब श्लोक संख्या 18 और 19 साथ में है। सम शत्रु च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुखेशु समः संग विवर्जितः। पुनः आगे नहीं, द्वंद्व की बात आपको पकड़ में आना चाहिए। अभी अगर द्वंद्व द्वंद्व को समझोगे आप, द्वंद्व किसको कहते हैं, द्वंद्व द्व द्व मतलब ये क्या है, दो है टू आइटम्स, द टू एक्सट्रीम्स, या जो कॉइन होता है उसकी दो साइड होती है ना, तो उस प्रकार। तो समहा संभाव इक्विलिब्रियम, तुल्य निंदा स्तुति मौनी, तुल्य निंदा स्तुति, एक निंदा हुई एक स्तुति हुई, द्वंद हुआ कि नहीं, आप समझ रहे, स्तुति वाह वाह शाबाश, ये स्तुति हुई, निंदा है बेकार इडियट कहता, तो ये निंदा हुई, तो ये कहे तुल्य, तुल्य मतलब समान, दोनों स्थिति में समभाव। मौनी संतुष्टो एन केनचित अनिकेतनः, निकेतन मतलब निवास स्थान, अनिकेतनः स्थिरमतीर भक्तिमान मे प्रियो नरः। अनुवाद और तात्पर्य प्रभुपाद की, जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में समभाव रखता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, है तो है सही, नहीं तो संभाव, परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। तात्पर्य भक्त सदैव कुसंगति से दूर रहता है, कुसंगति से भक्त क्या करता है, दूर रहता है। असत संगति आगात यही वैष्णव आचार। वैष्णव का आचरण कैसे होता है? असत संग त्याग। असत संग को जो त्यागता है वो वैष्णव कहलाता है। वैष्णव सदैव दूर रहता है, सावधान रहता है, साधु सावधान। मानव समाज का यह स्वभाव है कि कभी किसी की प्रशंसा की जाती है तो कभी उसकी निंदा की जाती है, लेकिन भक्त कृत्रिम यश या अपयश, दुख या सुख से ऊपर उठता हुआ होता है। वह अत्यंत धैर्यवान होता है। वह कृष्ण कथा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं बोलता। ये मौनी की बात चल रही है। मौनी भगवान ने कहा, मौनी होते हैं ना, मौनी कुछ मौनी क्या होते हैं, मौनी मौन धारण करते हैं, तो मौनी होना चाहिए। भगवान कहे मौनी मुझे प्रिय है तो मौनी का, मौनी की व्याख्या प्रभुपाद कर रहे हैं। मौनी ओके, कृष्ण कथा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं बोलता। मौनी वो व्यक्ति है जो कृष्ण कथा के अलावा और कुछ नहीं बोलता, वो व्यक्ति मौनी है। आगे कहेंगे, लिखेंगे, लिखेंगे। अतः उसे मौनी कहा जाता है। मौनी का अर्थ यह नहीं कि वह बोले नहीं, क्योंकि वैसे मन उसका बोलता रहता है। कई हम भी कई मौनियों को मिले तो वो मुख से बोलते लेकिन लिखते रहते हैं। तो अंदर तो बोल लिया ना, मन ने बोल लिया, सब विचार हो रहा है, सब एवरीथिंग केवल मुख से नहीं निकल रहा, इतना ही या तो सब चल रहा है उनका। कभी उंगली करके दिखाएंगे कुछ संकेत। तो और पढ़ ही लेते प्रॉपर लिखे हैं। तो मौनी का अर्थ ये नहीं कि वो बोले नहीं, अभी तो यह कि वह अनर्गल आलाप न करे। मनुष्य को मतलब संसार की बकबक न करे। हरे कृष्ण कर लिए तो मौनी हो गया। हम लोग मौनी है, बस हम क्या करते हैं, कीर्तनीय सदारी है, मौनी है, लेकिन कुछ फिल्म सॉन्ग कहना शुरू कर दिया था मैंने बस। तो वैसा नहीं होना चाहिए। सांसारिक शब्दों का उच्चारण या वो बातचीत भौतिक मायावी वो बोलना, आवश्यकता पर बोलना चाहिए। और भक्त के लिए सर्वाधिक अनिवार्य वाणी तो भगवान के लिए बोलना है। भगवान के लिए बोलो, भगवान की ओर से बोलो। भक्त समस्त परिस्थितियों में सुखी रहता है। कभी उसे स्वादिष्ट भोजन मिलता है तो कभी नहीं मिलता, किंतु वह संतुष्ट रहता है। वह आवास की सुविधा की चिंता नहीं करता। वह कभी पेड़ के नीचे रह सकता है तो कभी अत्यंत उच्च प्रासाद में। हम लोग पद यात्रा में जाते हैं तो रोना भी होता है। लिटरली कभी पेड़ के नीचे ही या नदी के किनारे या मैदान में, कोई स्थान मिला ही नहीं, किसी ने आमंत्रित नहीं किया तो। और षड गोस्वामी वृंदों का जीवन तो ऐसा ही रहा, किंतु वह इनमें से किसी के प्रति आसक्त नहीं रहता। वह स्थिर कहलाता है क्योंकि वह अपने संकल्प तथा ज्ञान में दृढ़ होता है। भले ही भक्त के लक्षणों की कुछ पुनरावृत्ति हुई हो, भगवान जब गुणों की बात कर रहे हैं तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि हो सकता है भगवान ने कुछ गुण पुनः कहे, दोबारा कहे, दूसरे शब्दों में कहे वही गुण। लेकिन यह इस पर बल देने के लिए है कि भक्त को ये सारे गुण अर्जित करने चाहिए। अर्जित मतलब प्राप्त करना, अर्जन, धन अर्जन होता, धन अर्जन, गृहस्थों का धर्म धन अर्जन, ब्रह्मचारी का धर्म ज्ञान अर्जन, अर्जन मतलब प्राप्त करना। तो यह गुण अर्जन की बात, गुण अर्जन, उन गुणों को प्राप्त करना, उदित करना, जागृत करना। सद्गुणों के बिना कोई शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणः। हरि का जो भक्त नहीं है उसमें अच्छे गुण कहाँ से आएंगे? आएंगे मतलब ही अच्छे गुण नहीं आएंगे, संभव ही नहीं है। जो भक्त नहीं है उसमें सद्गुण नहीं होता। जो भक्त कहलाना चाहता है उसे सद्गुणों का विकास करना चाहिए। यह अवश्य है कि उसे इन गुणों के लिए अलग से बाह्य प्रयास नहीं करना पड़ता। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं, यह गुण अर्जन की बात की है, गुण अर्जन अर्जित करने चाहिए, लेकिन प्रभुपाद लिख रहे हैं कि कोई अलग से बाह्य प्रयास नहीं करना पड़ता, अपितु कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में संलग्न रहने के कारण उसमें ये गुण स्वतः विकसित हो जाते हैं। इस पर हम चर्चा किए हैं। ओके, और ये अंतिम वचन है या इस अष्टक का आठवां। अष्टक है एतु धर्मामृतम् इदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धधानामत्परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रियः। जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपे न संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय है। कुछ अंश पढ़ेंगे इस तात्पर्य का और फिर एनी क्वेश्चंस, कोई प्रश्न है तो देखते हैं। इस अध्याय में सुनिए प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं। यहाँ पर इस अध्याय में दूसरे श्लोक से अंतिम श्लोक तक मैयावेश मनो इमाम, मुझ पर मन को स्थिर करके से लेकर एतु धर्मामृतम इदम नित्य सेवा, इस धर्म को यहाँ तक भगवान ने अपने पास तक पहुँचने की दिव्य सेवा की विधिया विधियों की व्याख्या की है। दूसरे श्लोक से 20वें श्लोक तक इस अध्याय में 20 श्लोक ही है। तो पहला श्लोक तो अर्जुन का प्रश्न है, इस अध्याय के प्रारंभ में और फिर दूसरे श्लोक से भगवान का उत्तर है। तो अपने पास पहुंचने की दिव्य विधियों की व्याख्या की है प्रभुपाद लिखते हैं। ऐसी विधिया, विधि समझते ना, विधि पद्धति या मार्ग प्रोसेस प्रकार, ऐसी विधियां उन्हें अत्यंत प्रिय है और इनमें लगे हुए व्यक्तियों को वे स्वीकार कर लेते हैं, भगवान स्वीकार कर लेते हैं जो इस विधि को अपनाए हुए हैं। अर्जुन ने यह प्रश्न उठाया था कि जो निराकार ब्रह्म के पथ में लगा है वह श्रेष्ठ है या जो साकार भगवान के सेवा में, इस प्रश्न से शुरुआत हुई इस अध्याय की। तो ये साकार निराकार का जो द्वंद्व का हो, उसका स्पष्टीकरण इस अध्याय में भगवान ने किया। भगवान ने इसका बहुत स्पष्ट उत्तर दिया है कि आत्म साक्षात्कार की समस्त विधियों में भगवान की भक्ति निसंदेह सर्वश्रेष्ठ है। इस अध्याय का नाम ही क्या है, भक्ति योग, द्वादश अध्याय भक्ति योग। भक्तियों की स्थापना भगवान किए हैं। दूसरे शब्दों में इस अध्याय में यह निर्णय दिया गया है कि सुसंगति से मनुष्य में भक्ति के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। सुसंगति मतलब सत्संग, सुसंगति अच्छा संग, अच्छी संगति से क्या होता है, भक्ति के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। भक्ति के प्रति आसक्त होते हैं, भक्ति को हम अपनाते हैं, भक्ति करने के लिए प्रेरित होते हैं सत्संग करने से, जिससे वह प्रामाणिक गुरु बनाता है और वह उसे श्रद्धा आसक्ति तथा भक्ति के साथ सुनता है, कीर्तन करता है और भक्ति के विधि विधानों का पालन करने लगता है। इस तरह भगवान की दिव्य सेवा में तत्पर हो जाता है। इस अध्याय में इस मार्ग की संस्तुति की गई है। अतएव इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता कि भगवत प्राप्ति के लिए भक्ति ही आत्म साक्षात्कार का परम मार्ग है। ओके, तो या हम अपने विराम कर देते हैं, अभी तक पर है। Any discussion points?
हमने देखा कि भगवान कह रहे हैं कि भक्त कभी किसी के चिंता का या उसके उद्वेग का कारण नहीं बनता। और एक जगह प्रभुपाद जी कहते हैं कि जटायु है ये हमारे समक्ष आदर्श प्रस्थापित करते हैं कि जो कृष्ण भावना विरोधी तत्व है उनका हम किस प्रकार दमन करें, उनसे किस प्रकार विरोध करें, उनसे हमें युद्ध करना है। तो ये दोनों चीजें एक वक्त कैसे संभव हो सकती है?
मौनी मौनी होने के लिए भगवान ने कहा, तो मौनी मतलब केवल केवल मुख बंद करने से मौनी नहीं होगा, अनर्गल बात नहीं करना, बात तो करना लेकिन अनर्गल या बकवास नहीं करना या माया बातें नहीं करना, केवल कृष्ण कथा ही करना, मौनी हो गया। तो उसी प्रकार ये विचलित करने की बात, भगवान के भक्ति का प्रचार हम करें, जो अश्रद्धालु है उनको उनको प्रचार नहीं करना चाहिए, ऐसा ऐसा आदेश है। अश्रद्धालु को हम प्रचार करेंगे, एक दृष्टि से उसको हम विचलित करते हैं, जिसमें वो सेट है न तो हिलना या डुलना चाहता है, और हम उसको या उसके विचार का स्तर काफी निम्न है या श्रद्धाहीन है, ऐसे व्यक्ति को प्रचार करना एक दृष्टि से उसको विचलित करना है, तो उसको उसे दूर रहे, उसको प्रचार न करे, उसको विचलित न करे। या फिर हमने विचलित किया वो तैयार तो नहीं था हम जो समझा रहे हैं, तो उसका कुछ उल्टा सुलटा प्रचार भी कर सकता है। राधा कृष्ण की लीला उनका हमने कुछ बातें सुनाई, राधा कृष्ण की प्रणय विकृति रल्हादनी शक्ति रस्मात, उसको नहीं समझेगा और कृष्ण को साधारण व्यक्ति समझ सकता है। राधा कृष्ण के जो ट्रांसेंडेंटल अफेयर्स जो है तो लोग समझते नहीं, तो उनको हम हमें विचलित नहीं करना चाहिए, तो उनको पड़े रहने दो, या उनका समय नहीं आया। ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन्तो गुरुर्हितं दासवत् नीचो। या भक्त या शिष्य जब कृष्ण भावना भावित होते हैं उसका अवलंबन करते हैं, उसको देखते हुए गुरु प्रसन्न होते हैं। चतुर्विधा श्री भगवत प्रसाद स्वात्मान तृप्तान हरि भक्त संघान। और आगे भजता सदैव वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो इस श्लोक में कहा है कि गुरुजन देखते हैं कि शिष्य मंडली क्या कर रही है, भगवत प्रसाद ग्रहण कर रही है, तब वो संतुष्ट होते हैं। चतुर्विधा श्री भगवत प्रसाद स्वाद्वान्न तृप्तान हरिभक्त संघान, हरिभक्तों का संघ प्रसाद ग्रहण कर रहा है, ये देख के गुरु प्रसन्न होते हैं। हमें पदयात्रा करने के लिए कहा, कहे श्री प्रभुपाद। पदयात्रा करते हुए हम वृंदावन से प्रयाग तक गए, 77 की बात है, और वहाँ प्रभुपाद से मिलकर जब हमने रिपोर्ट दिया कैसे पदयात्रा का सारा अनुभव हमने सुनाया, डिपेंडिंग ऑन कृष्णा और कैसे हर स्थिति का मुकाबला करते हुए, कभी स्तुति तो कभी निंदा, कभी सारी, तो वो सारा वर्णन जब रिपोर्ट जब प्रभुपाद सुन रहे थे तो वो प्रभुपाद इतने प्रसन्न थे, सो हैप्पी, सो उनके चेहरे पर जो हैप्पीनेस, जो सुख और समाधान संतुष्टि का जो चमक झलक जो हमने देखी, तो फिर वही हमारे प्रेरणा का आगे का स्रोत बनी और हम पदयात्रा कर ही रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि ऐसी सेवा से, ऐसी जो भी तपस्या से, ऐसे कार्यकलापों से जो उन्हीं का आदेश था, गो टू द विलेजेस, गो एवरी टाउन, हरे कृष्ण उपदेश को पाते हैं, जा रहे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, तो मतलब भगवद गीता का उपदेश। तो प्रभुपाद के गांव के लोग कृष्ण उपदेश को नहीं समझ सकते, तो उनको जा रहे देखो तारे कहो हरे कृष्ण उपदेश, मतलब कीर्तन ही करो, तत्व ज्ञान अगर नहीं समझते तो हरे कृष्ण उपदेश, कृष्ण उपदेश, हरे कृष्ण उपदेश। तो ये सब वृंदावन में चर्चा हुई थी, पदयात्रा बुल्लकार संकीर्तन पार्टी का उद्घाटन करने वाले जैसे श्रील प्रभुपाद ही थे। तो कुछ 2-2.5 महीने के उपरांत जब हम पुनः मिले और फिर रिपोर्ट दिया, तो बस सो लाइक दैट। सो मेनी एग्जाम्पल्स लाइक दैट। बुक डिस्ट्रीब्यूशन की रिपोर्ट प्रभुपाद को मिलते थे, मेरे शिष्य इतने बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर, इतने ग्रंथों का वितरण हो रहा है, तो वो रिपोर्ट अति प्रसन्न करने वाले प्रभुपाद को, वेरी हैप्पी। क्योंकि बुक डिस्ट्रीब्यूशन ये कोई व्यापार तो नहीं था, ये तो ज्ञान का वर्धन या ज्ञान का वितरण, तो ज्ञान वितरण कर रहे हैं मेरे शिष्य ऑस्ट्रेलिया में इतने, और बंबई में एक महीने में 1,00,000 भगवद गीता का लक्ष्य, एक महीने में कितनी भगवद गीता? 1,00,000 भगवद गीता। I will never die, कहते हैं। जब तक ग्रंथ वितरण हो रहा है, I will never die। तो गुरु को क्या चाहिए? दक्षिणा न धनम न जनम न च सुंदरिम। तो अपने शिष्य जो उनके पुत्र जैसे तरक्की कर रहे, उन्नति कर रहे, उत्कर्ष कर रहे हैं आध्यात्मिक जीवन में, वही देख के जैसे साधारण भौतिक जीवन में माता पिता प्रसन्न होते हैं, जो भी व्यापार का जो भी प्रोग्रेस की likewise हम चार नियमों का पालन कर रहे हैं। स्पिरिचुअल मास्टर इज प्लीज्ड। हरि नाम का जप कर रहे हैं। स्पिरिचुअल मास्टर इज प्लीज्ड। That is with you also, Prabhupada. Okay. हम प्रभुपाद को हमारे साथ ट्रैवलिंग करना, प्रभुपाद विदेश में थे और ने पत्र लिखा कि प्रभुपाद जब लौटेंगे तो हमारे साथ ट्रैवल करें। हमारी नारद मुनि ट्रैवलिंग संकीर्तन पार्टी थी। तो प्रभुपाद श्रेय वो है ना, रिटर्न मैं देख लूँगा, संभव है। ऐसा भी लिखे और फिर ये भी लिखे कि सो फार यू आर फॉलोइंग 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, चैंटिंग 16 राउंड्स, यू शुड कंसिडर आई एम विद यू। सो वेदर आई ट्रैवल नॉट ट्रैवल, बट यू शुड consider I am with you. Means I am pleased with you and I am with you. Or if he's not pleased, then he won't be with us. Yeah, is that okay? Bhakti se तथा भक्तों के साथ कई वर्ष बीत जाने पर भी अगर ये गुण हृदय में उदित नहीं होते तो हमें क्या करना चाहिए? जान तो नहीं दे सकते। एक तो प्रयास को नहीं छोड़ना चाहिए, दूसरा तो उपाय नहीं है। हमें गुण तो भक्ति करके ही ये सब गुण आ जाएंगे हमें। सर्वै गुणै समासते सुरः, ये जो सिद्धांत है, ये जो शास्त्र है, इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं है। तो थोड़ा रिव्यू कर सकते हैं कि हमारी हम भक्ति तो कर रहे हैं तो उसमें कोई दोष तो नहीं है, कोई त्रुटि तो नहीं है, कोई अभाव तो नहीं है, कोई अपराध तो नहीं हो रहे हैं। सो स्टॉप देन प्रोसीड। दिस इज सिंहावलोकन, सिंहावलोकन, सिंह कहीं जाता है तो बीच में रुकता है और अवलोकन करता है, मैं कहाँ हूँ, कितना दूर पहुँचा हूँ। मुझे और कहाँ तक जाना है, सिंहावलोकन तो हमें भी फ्रॉम टाइम टू टाइम। वैसे भक्ति विनोद ठाकुर कहा करते थे कि वैष्णवों को ऑन एवरी एकादशी, पिछले दो सप्ताह में हमने जो भक्ति की, सेवा की, जप किया, उसका रिव्यू करना चाहिए, कैसे कैसी रही मेरी भक्ति। हम औरों से पूछ सकते हैं, कभी के वो ड्राइवर्स, लॉरी ड्राइवर पीछे लिखा होता है, हाउ इज माई ड्राइविंग, दिस इज माई नंबर, तो पीछे व्यक्ति नोट करता है, कभी कभी करता है। हम औरों की मदद से भी, गुरुजनों की मदद से, हमारे हमारे वरिष्ठ भक्तों की मदद से, हमारे काउंसिलर की मदद से हम थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन थोड़ा टटोल सकते हैं, यहाँ तक हम पूरे लाभान्वित होंगे उस भक्ति से। कैरेक्टर मस्ट चेंज, ये गुण आने चाहिए, गुणों को अर्जन करना है। तो प्रोसेस तो यही है, औरों में गुण प्रकट हो रहे हैं, वो गुण संपन्न हो रहे हैं, वही विधि है, वही मंत्र है, वही कृष्ण, वही गुरु, वही मंत्र, वही शास्त्र, तो वो तरक्की करे, वाई नॉट मी, मैं क्यों नहीं, सो समथिंग रॉन्ग विथ मी, नॉट विथ द प्रोसेस। विधि में कोई दोष नहीं है, महामंत्र में कोई दोष नहीं है, भक्ति के विधि में कोई दोष नहीं है, उसको फॉलो करने में ही हमें कोई त्रुटि हो सकती है तो पता लगवा सकते हैं, लेकिन उपाय तो दूसरा है। There is no other way, there is no other way, there is no other way. क्योंकि कहा ही हरौ अभक्तस्य कुतो महद गुणा, कोई हरि का भक्त ही नहीं, हरि की भक्ति ही नहीं करता तो कहाँ से आएंगे गुण। तो हम भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन शायद अभी तथा कथित ही भक्ति कर रहे हैं, या कुछ हो सकता है कुछ आडंबर ही कर रहे हैं, या कुछ ऐसा कुछ दिखावा कर रहे हैं, समथिंग पॉसिबल लाइक दैट। कल आप कहे थे दिस इज सेम क्या, इज नॉट योर्स, उन सब गुणों में से एक भी गुण को कोई अपना अपने विकसित करता है तो वह भगवत धाम जा सकता है। ये संभव है तो एक गुण और बाकी गुण, बाकी अवगुण द्वंद्वातीतो विमत्सरः, सारे द्वंद्व ही द्वंद्व द्वंद्व है, तो द्वंद्व से मुक्त हुआ, इस गुण से मुक्त हुआ, या इस अवगुण से मुक्त हुआ, तो वो जुड़े हुए, वो सटे हुए, उसका अलग नहीं किया जा सकता उसे। दूसरे गुण भी आ जाएंगे, ऐसे शास्त्र में कहा है, आधा श्लोक भी पढ़ोगे, आधा श्लोक भी पढ़ोगे सफिशिएंट। तो लगता है थोड़ा कुछ एग्जैजरेशन तो नहीं हो रहा है, कुछ अतिशयोक्ति तो नहीं हो रही है। एक श्लोक पढ़ो, एक श्लोक पढ़ो। तो ऐसे फिर एक वो व्यक्ति वहाँ नहीं रुकेगा, एक श्लोक ही पढ़ के और भी पढ़ेगा और पढ़ना चाहेगा और पूरे ज्ञान को अर्जन करेगा। तो नम्र ही होगा, नम्रता भी एक गुण है। तो विद्या विद्या ददाति विनयम का, विद्या ददाति विनयम का। तो कोई विनयी हो गया, विनयी, विद्या ददाति विनयम। फिर आगे का विनयात याति पात्रता। तो विद्यार्जन किया, विद्यार्जन किया, उसका फल क्या? वो विनयी होगा। विद्या का अर्जन करने से वो नम्र होगा, नम्र होने से फिर वो पात्र होगा, उसको पात्र प्राप्त हुआ, फिर वो सारा संग्रहित करेगा कृष्ण को, कृष्ण भावना, कृष्ण अमृत, कृष्ण के गुण। राइट, सो लाइक दैट। एक से शुरुआत हो गई तो धीरे धीरे और गुण भी वो प्राप्त करके ही बैठेगा, प्राप्त होंगे ही उसको। एनीथिंग न्यू? इन सभी वर्णित गुणों में कौन सा ऐसा मूल गुण है जिसे सारे गुण विकसित हो सकते हैं? भक्तिमान, क्या था बस वेरी लास्ट वन, उसको भगवान ने कहा। एतु धर्मामृतम इदम् यथोक्तम पर्युपासते। तो उसको सारे गुणों को वैसे समराइज करते हुए उसको धर्मामृतम, ये सारे गुण या गुणों का अवलंबन, इसको धर्म अमृत या उसके भाषांतर में भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं। जब भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं वे मुझे अत्यधिक प्रिय है। ये सारे गुण कहे, ये गुण वो गुण कहा, फिर उन गुणों को ही एक शब्द में, एक वाक्य में भगवान कह रहे हैं, एतु धर्मामृतम इदम् यथोक्तम, जिसको मैंने कहा पर्युपासते। जो इस मार्ग पर रहता है, इस पथ पर रहता है, तो उस पथ पर रहना, धर्म के पथ पर, ये भी गुण हुआ। तो अमर पथ का अनुसरण करते हैं और मुझे अपना लक्ष्य बनाते हैं, श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय है। और बस हरेर नाम ईव केवलम जो कीर्तन ही करते हैं, फिर कलेर दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुना। ये जो नाम जप कीर्तन ये कलियुग का एक महान गुण, सारे तो अवगुण है, दुर्गुण है। कलेर दोष निधे राजन अस्ति मतलब है अस्ति एको महान गुना, एक महान गुण वो कौन सा है? कीर्तनादिव कृष्णस्य मुक्त संगः परम व्रज। वो केवल कीर्तन करेगा और कीर्तन करते हुए इस भक्ति वेदांत स्वामी मार्ग पर रहेगा, भक्ति वेदांत स्वामी मार्ग। तो फिर वो सीधे कृष्ण बलराम मंदिर पहुंच जाएगा, भक्ति वेदांत स्वामी मार्ग। कीर्तन करते हुए भक्ति वेदांत स्वामी मार्ग पर जा रहा है तो लक्ष्य क्या है? कृष्ण बलराम के चरण कमल को प्राप्त करेगा। तो वो एक है, वो एक है कृष्ण, कृष्ण का नाम, और उसको भी गुण कहा है। ओके, सभी प्रश्न हो गए? निराकार तो भक्ति भक्ति नहीं करते हैं। या कुछ करना मतलब ही वो माया समझते हैं। कुछ करना, कुछ सोचना, कुछ हिलना, कुछ डुलना, कुछ रूप, कुछ गुण, कुछ शाम, ये जो वैविध्य है, विविधता है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये भी निराकार या अद्वैत सिद्धांत के अंतर्गत या अद्वैत, अद्वैत मतलब दो नहीं, मैं और भगवान ये दो हुए ना, दो नहीं एक। तो मतलब भक्ति का, भक्ति के लिए दो होने चाहिए। जैसे हम वो त्रिकोण या ट्रायंगल की बात कहें, भक्त भगवान भक्ति, भक्त करता है भक्ति तो भगवान को प्राप्त होता है, और भगवान को प्राप्त होने के उपरांत भी वो तो मुक्त हो गया, वैसे अभी वो रहता है, भक्त भी है भगवान भी है, यह भी है भक्ति करते 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 इस ब्रह्मांड में भी संसार में भक्ति कर रहा है, भगवान भी है भक्त भी है भक्ति भी है, और भगवान के धाम में वही है शुद्ध अवस्था में पूर्ण साक्षात्कार के साथ। भाई भक्त है, भगवान है, भक्ति है। तो निराकारवादियों के लिए ये वैकुंठ जगत और वहाँ भगवान का, भगवान रहते हैं वहाँ, यहाँ से वहाँ जाते हैं और वहाँ जीव रहते हैं, एक एक जीव भगवान का संगी साथी परिकर होके, ऐसा विचार नहीं है उनका, ऐसी मान्यता उनकी अन्य मान्यताएँ हैं। तो भक्ति के लिए या सेवक, सेवा और सेव्य कहते हैं, सेव्य जिसे हम पूज्य कहते हैं, इसकी हम पूजा करते हैं, सेव्य। तो सेव्य तो भगवान है, तो हम सेवक है, हम सेवा करते हैं सेव्य की, भगवान की। तो उनके लिए वो अलग नहीं है, ज्योत में ज्योत मिलाने के बाद। तो इतना तो स्पष्ट हो गया ना। तो बहुत बहुत ज्यादा पार्ट हो गया, वैसे उनका जो भाष्य है उसको नहीं सुनना चाहिए, मायावाद भाष्य सुने ले, पहले सर्वनाश, भक्ति का नाश, भक्ति के भाव जो है उसका, उसके लिए वो खतरनाक है, भयानक है। इसीलिए अद्वैताची वाणी नको माझा कानी, तुका म्हणे तुकाराम महाराज भी कहे, अद्वैताची वाणी नको माझा कानी। ओके, बताए गौर प्रेमानंदे।
परम विश्वनाथ से महाराज की, श्रीमद भगवद गीता की, से भगवत प्रसाद भी है, इतना सुख है तो वो सौ पाठ महाराज।